4 फरवरी दिन सोमवार दिन भर मैं हूँ रेहान फदर। कोलकाता में ममता बनर्जी का धरना अभी भी जारी, किसके हक में है कानून?
कुछ लोहो खूटा कुछ लुहार। अब यहाँ सारे प्रकरण में अगर आप देखें तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रहा? सीबीआई भाग के जा रही है ऐसे जैसे कि राज्य वहाँ नहीं है, कि जैसे इतने के दिनों से जो केस चल रहा था श्रद्धा का, रोज वैली का, जैसे एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा।
विश्व कैंसर दिवस पर बात करेंगे मशहूर ब्यूटी क्वीन और अभिनेत्री नफीसा अली से।
लास्ट टू मंथ से जो मेरा अंदर जो डाउनवर्ड एनर्जी लेवल्स होते गए ये मेरे को समझ में नहीं आया, और इसलिए मैं बार बार डॉक्टर के पास गए कि कोई चीज है।
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ अपना धरना 8 फरवरी तक जारी रखने की घोषणा की है। ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच विवाद पर आज चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सीबीआई कोर्ट के सामने जानकारियां पेश करे, जिसके दम पर वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर सबूत नष्ट करने का आरोप लगा रही है। लोकसभा में भी सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस का मामला गूंजा। प्रश्नकाल के दौरान टीएमसी के नेताओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद लोकसभा कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के निचले सदन लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के बीच इस तरह का टकराव असंवैधानिक है। यूरोप के अग्रणी देशों ने वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन ग्वाइडो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी है। इन देशों ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से देश में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी, जिसे मादुरो ने ठुकरा दिया था। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का कहना है कि खुआन ग्वाइडो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की स्पीकर की भूमिका में रहे हैं, जहां से उन्हें नई भूमिका में आने का वैधानिक रास्ता मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी ट्विटर के जरिए ग्वाइडो का समर्थन किया है। अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कई देश ग्वाइडो को पहले ही मान्यता दे चुके हैं, लेकिन निकोलस मादुरो के मुख्य समर्थक रूस ने इसे वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल बताया है।
Соединенные Штаты не скрывают, что они хотят сменить режим любой ценой. Президент Трамп
रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव कह रहे थे कि अमेरिका इस तथ्य को छिपा नहीं सकता कि वो वेनेजुएला की सत्ता को किसी भी कीमत पर बदल देना चाहता है। कल शायद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि सैन्य कार्रवाई के विकल्प पर विचार किया जा रहा है। ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बुनियादों को कमजोर कर रही हैं। ये थे रूस के विदेश मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के भावी संबंधों पर बातचीत में उत्तरी आयरलैंड के लिए विकल्पों को सामने रखना ब्रिटेन पर ही निर्भर करता है। जापान की यात्रा के दौरान एंगेला मर्केल ने कहा,
Es gibt bestimmt Möglichkeiten, die Integrität des Binnenmarktes, also die Geschlossenheit des Binnenmarktes, auch wenn
यूरोपीय संघ के आंतरिक बाजार की एकजुटता बनाए रखने के लिए कुछ विकल्प मौजूद हैं। उत्तरी आयरलैंड का भले ही इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि इसका संबंध ग्रेट ब्रिटेन से है और दूसरी ओर आयरलैंड की सीमाओं पर कुछ नियंत्रण की इच्छा भी है, इसके समाधान के लिए रचनात्मक होने की जरूरत है। हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। सूडान के राष्ट्रपति उमर अल बशीर ने देश के सभी बैंकों को कम राशि के लोन पर ब्याज दरों में कटौती करने और कम राशि वाली परियोजनाओं पर सेल्स टैक्स खत्म करने का आदेश दिया है। संवाददाताओं का कहना है कि निजी बैंकों को भी राष्ट्रपति के इस आदेश को मानना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने ये आदेश अपने खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद दिया है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि राष्ट्रपति उमर अल बशीर अपना पद छोड़ दें। खराब होती आर्थिक स्थिति के बीच पिछले साल दिसंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान 40 से अधिक लोग गोली लगने की वजह से मारे जा चुके हैं। हाल ही में सूडान के प्रधानमंत्री ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों की कुछ मांगे वाजिब हैं, जिनका सम्मान करना चाहिए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। कोलकाता में चिटफंड घोटाले की जांच से जुड़े मामले में जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। सीबीआई की टीम और कोलकाता पुलिस के बीच दंगल के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मेट्रो चैनल के नजदीक धरने पर अभी भी बैठी हुई हैं। आज पश्चिम बंगाल की विधानसभा का बजट भी पेश किया जाना था, उन्होंने धरना स्थल पर ही मंत्रिमंडल की बैठक की। थोड़ी देर पहले मैंने कोलकाता फोन कर बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से बात कर ताजा हालात का जायजा लिया।
ममता बनर्जी कल रात से ही धरने पे बैठी हुई है और शुरुआती कुछ घंटों में तो मंच भी नहीं बना था। ममता बनर्जी जब पहुंची थी तब दूसरी तरफ मंच बनाने का काम भी शुरू हो गया था और रात तक वो खत्म भी हो गया और आज सुबह से ममता बनर्जी उसी मंच पे धरने पे बैठ गई है और उसी मंच से उन्होंने एक भाषण भी दिया है। तृणमूल कांग्रेस के किसान खेत मजदूर जो संघ है उसी का एक सम्मेलन था, पहले से ही तय था, तो उसको ममता बनर्जी को संबोधित करना था, तो उसी धरना मंच से ही उन्होंने संबोधित की मोबाइल के जरिए। और एक खास बात और भी बता दें कि आज राज्य बजट पेश होने वाला था, बजट पेश हुई है तो उससे पहले जो औपचारिक रूप से कैबिनेट बैठक की जाती है वो भी धरना मंच के बगल ही में एक छोटा सा कमरे में किया गया और दिन भर वहीं पर बैठी रही अभी भी है। और ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि 8 फरवरी तक ये धरना चलेगी क्योंकि उसके आगे पश्चिम बंगाल जो मैट्रिकुलेशन बोर्ड है क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही ये धरना खत्म हो जाएगी। और दूसरी ओर राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी कल रात को ही बुला लिए थे पश्चिम बंगाल के डीजीपी मिस्टर वीरेंद्र और चीफ सेक्रेटरी मलय दे को, उनके साथ बैठक किया था और आज भी इन्होंने बुलाया था। ये पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि उन्होंने जो एसआईबी है जो सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो है तो उनसे भी रिपोर्ट लिया है और सारे रिपोर्ट इकट्ठा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेज दिए है राज्यपाल ने।
अच्छा ये बताइए और पूरे राज्य में क्या प्रतिक्रिया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी?
देखिए जैसे ही ममता बनर्जी का ये जो घोषणा टेलीविजन पर दिखाया गया तभी से तृणमूल कांग्रेस के लोग रास्ते में उतर गए थे और कई जगह पर रेल रोको भी रात को ही हो गया था और धरना मंच के सामने हजारों के तादाद में तृणमूल कांग्रेस के लोग वहां जमा हुए थे, रात भर वही थे। और आज सुबह से जगह जगह रेल रोको कर दिया गया था और जुलूस निकाले गए, रैली निकाले गए और पूरे राज्य भर में आज शाम को 4 से 5 बजे के बीच हरेक जगह पर हरेक मोहल्ले पे रैली निकाले गए और इनका जो तेवर देखा गया कल रात से ही तृणमूल कांग्रेस के कर्मियों का वो है बहुत जबरदस्त, एंटी मोदी और एंटी बीजेपी एंटी सीबीआई, ये तीनों के खिलाफ वो नारे लगाते रहे और आज की जुलूसों में भी ऐसे ही नारा सुनाई दिया।
ये थे कोलकाता से बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली। सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार का मुद्दा आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गर्म रहा। संसद में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा और कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल मामले में किसके हक में है कानून? फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
लोकसभा के शुरू होते ही विपक्ष ने कल कोलकाता में जो हुआ उस मामले को सदन में उठाना शुरू कर दिया। इसमें कांग्रेस से लेकर तृणमूल कांग्रेस सभी दल के लोग शामिल थे। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने कहा,
द मैनर इन विच सीबीआई हैज बीन फंक्शनिंग ड्यूरिंग लास्ट
सीबीआई पिछले 2-3 माह में जिस तरह से काम करती रही है उसमें किसी किस्म का प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखता है। आज इसीलिए इसकी आलोचना हो रही है। ये अंधेर नगरी नहीं है। ये थे बीजेडी सांसद के शब्द। सोशल मीडिया पर लिखते हुए जानी मानी वकील और संविधान की जानकार इंदिरा जयसिंह ने इसे संघीय ढांचे पर एक बड़ा प्रहार बताया। एक ट्वीट में इंदिरा जयसिंह ने कहा है, पश्चिम बंगाल ने अपराधियों की जांच के लिए सीबीआई को दी गई आम सहमति को वापस ले लिया था। ये केंद्र द्वारा संघीय ढांचे पर सीधा सीधा हमला है। इसने एक संवैधानिक जंग जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो आखिर पश्चिम बंगाल मामले में किसके हक में है कानून? सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज सिंह पूरे मामले की व्याख्या एक पुराने कहावत से करते हैं।
देखिए इसको मैं कहूंगा कि कुछ लोहा खोटा कुछ लुहार। अब यहाँ सारे प्रकरण में अगर आप देखें तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रहा? सीबीआई भाग के जा रही है ऐसे जैसे कि राज्य वहां नहीं है, कि जैसे इतने दिनों से जो केस चल रहा था श्रद्धा का, रोज वैली का, जैसे एक ही दिन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, किन्हीं ने आके आकाशवाणी इनके कान पे कर दी कि आज ही नहीं एविडेंस लोगे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाउ डू दे नो?
सूरज सिंह कहते हैं जो सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट के सामने गई है वो पहले क्यों नहीं जा सकती थी और क्यों नहीं कह सकती थी कि पश्चिम बंगाल के पुलिस के अमुक अधिकारी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूरज सिंह का ये भी कहना था कि आप किसी वरिष्ठ अधिकारी के यहाँ पहुंचकर उसके साथ किसी मुजरिम की तरह सलूक नहीं कर सकते, ये कहाँ का कानून है। दूसरी तरफ उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी जिस तरह पंचायत तक आकर बैठ गई हैं वो भी गलत है, उनके लिए भी अदालत का दरवाजा खुला था। सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त डायरेक्टर एनके सिंह कानूनी तौर पर कलकत्ता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई को सही मानते हैं।
लीगली सीबीआई वाज कॉम्पिटेंट टू प्रोसीड इन द केस बिकॉज़ द केस वाज स्टिल ऑलरेडी अंडर।
कानूनी तौर पर सीबीआई के पास जांच का अधिकार था क्योंकि सीबीआई को दिए गए सामान्य आदेश के समय इस केस में जांच जारी थी। दूसरी बात है कि ये जांच सीबीआई सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कर रही है। ये थे सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त डायरेक्टर एनके सिंह के शब्द। लेकिन एनके सिंह के मुताबिक जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई रविवार को हुई है उससे राजनीतिक विद्वेष की गंध आती है। वो कहते हैं कि एजेंसी का एक नया डायरेक्टर नियुक्त हो चुका है जो जल्द ही कार्यभार संभालेगा, तो फिर इस तरह की जल्दबाजी किस बात को लेकर थी। पश्चिम बंगाल ने कुछ दिनों पहले सीबीआई को अपने क्षेत्र में जांच के लिए दिए गए सामान्य आदेश या जनरल कंसेंट को वापस ले लिया था। प्रदेश सरकार ने यह भी कहा है कि पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने के लिए सीबीआई अधिकारियों के पास वारंट नहीं था। हालांकि एनके सिंह कहते हैं कि इसके लिए किसी तरह के वारंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन अधिकारी जिस तरह से राजीव कुमार के घर पर रविवार शाम पहुंचे वो गलत था।
दिन भर शॉर्ट वेव 49, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5,875, 9,510 और 11,995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
प्रयागराज में चल रहे कुंभ में आज सबसे महत्वपूर्ण पर्व मौनी अमावस्या पर लाखों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। प्रशासन का दावा है कि करीब 3 करोड़ लोगों ने आज संगम में स्नान किया। संगम क्षेत्र के अलावा प्रयागराज शहर की कई सड़कों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। हालांकि इसकी वजह से श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतें भी हुई। सुनिए समीर राजपंत मिश्र की रिपोर्ट।
सोमवार को सुबह तड़के ही जहां संगम क्षेत्र में अखाड़ों और नागा साधुओं का शाही स्नान शुरू हुआ, वहीं कई किलोमीटर दूर तक फैले घाटों पर श्रद्धालुओं के स्नान का तांता लगा रहा। मेला प्रशासन का दावा है कि मौनी अमावस्या के दिन संगम में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे और शहर से काफी दूर वाहनों को रोक दिया गया था। यही नहीं, सभी श्रद्धालुओं को संगम की बजाय अन्य घाटों पर ही नहाने की तैयारी भी प्रशासन ने कर रखी थी। मेला क्षेत्र के DIG OP सिंह ने बताया
कि हमारे अखाड़े परंपरागत रूप से संगम पे आते हैं, उनके लिए अलग से घाट है शाही स्नान का, और जो लोग हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग बनारस से आ रहे हैं उनके लिए हमने एक बहुत बड़ा स्नान घाट जो हाथी द्वार है, रावत द्वार है, वहां पर बनाया है। वो लोग वहां पर आसानी से संगम में स्नान कर सकते हैं, और जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश जो जौनपुर आजमगढ़ पूर्वी बिहार से आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग हमारे खाद चौक में जो घाट है, हमारे जो 14 नंबर में घाट है, जो 15 नंबर में घाट है, जो 11 नंबर में घाट है, उस पर स्नान करें।
शाही स्नान पर विदेशी श्रद्धालुओं ने भी काफी उत्साह के साथ भाग लिया और संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान के दौरान प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। वाहनों को काफी दूर रोक देने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ा। बावजूद इसके उनका उत्साह और उनकी श्रद्धा देखने लायक थी।
हम लोग फतेहपुर से आ रहे हैं, जनरली में प्रॉपर रहने वाले इलाहाबाद का हूँ, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, मेरी विद फैमिली आया हूँ।
हम लोग उड़ीसा से आए हैं, अनुगुल से। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा काम किया है,
बहुत भव्य व्यवस्था है। राजस्थान से आए हम, राजस्थान से बहुत भव्य सुविधा है आज कुंभ की।
बहुत भीड़ है लेकिन बहुत सुंदर पानी था, ठंडा नहीं था, बहुत शरीर स्वस्थ करने वाला पानी था। तीर्थ यात्रा में पैदल चलना ही पड़ता है ना, अच्छा लगता है चलने में।
यहाँ 10 किलोमीटर आई है, जहाँ हम लोग आश्रम है वहाँ से 10 किलोमीटर आगे आई।
वहीं कुछ लोग अपनों के बिछड़ने की वजह से परेशान भी दिखे, लेकिन मिल जाने पर प्रसन्न भी हुए।
कहाँ से बच्चा हेरा गया है, बच्चा हेरा गया है तो मन तो बेचैन रहा, तब खोज के लिए तब अथी पुलिस के अथी के लिए तब मिला ला खबर के लिए तो पुलिस के द्वारा।
4 मार्च तक चलने वाले कुंभ मेले में अभी 3 और शाही स्नान बचे हैं। अमावस्या का शाही स्नान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है और इसीलिए इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ भी होती है। जानकारों के मुताबिक सोमवार के दिन यह पर्व आने की वजह से इसका महत्व और बढ़ जाता है।
ये थे समीर आठवट मिश्र, ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्याल रखने की बात कह रही हैं। इस वीडियो के आने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल के इस्तीफे की मांग की है। भोपाल से सूर्य न्यासी,
यदि प्लांट नहीं आता,
आप न पधारी थी वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका।
ऐसा कहीं आएगा, आप मोदी साहब पर ध्यान रखो।
जी जी।
यह आवाज उस वीडियो की है जो मध्य प्रदेश में वायरल हुआ है। इस वीडियो में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को कहते सुना जा सकता है कि मोदी साहब का ध्यान रखना। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में आनंदी बेन पटेल रीवा के सोलर पावर प्लांट में गई हुई थीं। वहां पर गांव वालों से बात करते हुए उन्होंने यह बात तब बोली जब लोगों ने क्षेत्र के नौजवानों के लिए नौकरी की बात कही। वीडियो में सुना जा सकता है कि लोग राज्यपाल से सोलर प्लांट में नौजवानों के लिए नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन वहां से जाने से पहले आनंदी बेन पटेल ने कहा कि इस तरह के बहुत से अवसर उन्हें मिलेंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री का ध्यान रखना होगा। लेकिन इस बात ने प्रदेश में विवाद छेड़ दिया है। सत्ताधारी कांग्रेस चाहती है कि राज्यपाल अपने पद से इस्तीफा दें, उसके बाद वह भाजपा के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र हैं। सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने कहा,
ये तो उनको मैं तो ये चाहता हूँ, उनको अपने जब कर्मा का ख्याल नहीं तो खुद ही त्याग पत्र देना चाहिए। जो व्यक्ति महामहिम राज्यपाल का संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद उनको सबके लिए, पूरे प्रदेश की जनता का, सरकार की नीतियों पर क्या जनता का हित, सरकार हित कर रही, अहित कर रही, उस पर गौर करना चाहिए, उनको सुझाव देना चाहिए। लेकिन वो अपने सुझाव इस प्रकार न देकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर बढ़कर काम कर रही है। ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी राज्यपाल के पद पर रहने के काबिल नहीं है। उनको मैं तो अनुरोध करूंगा कि कृपया करके त्याग पत्र दे।
यह पहला मौका नहीं है जब मध्य प्रदेश की राज्यपाल विवादों में आई है। इससे पहले पिछले साल अप्रैल में आनंदीबेन पटेल उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं को बताते सुना गया था, जिसमें वह कह रही थीं कि अगर वोट लेना चाहते हो तो बच्चों वाले घरों में जाओ और अपना हाथ उन बच्चों के सर पर रखो, तभी तुम्हें वोट मिलेगा। वहीं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता शोभा ओझा ने भी कहा है कि राज्यपाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। शुरहनिया जी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
एक्टर, पूर्व ब्यूटी क्वीन और राष्ट्रीय स्तर की स्विमिंग चैंपियन नफीसा अली ने पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम पर बताया कि वो स्टेज 3 कैंसर से जूझ रही हैं। बाद में जानकारी मिली कि उन्हें पेरिटोनियल कैंसर है। इसके कुछ सेल ओवरी में भी पाए जाते हैं, जो शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकते हैं। नफीसा के मामले में भी यही हुआ। बीमारी का पता चलने के बाद अब इससे जंग जारी है और नफीसा पूरे हौसले के साथ इससे लड़ रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें अब भी यकीन नहीं कि उन्हें कैंसर है। वो उस चुनौती का डट कर सामना कर रही हैं और बाकी लोगों को भी बता रही हैं कि किस तरह लड़ा जाना चाहिए। विश्व कैंसर दिवस पर उनसे सुनिए उन्हें कब और कैसे पता चला इस बीमारी के बारे में और अब वो कैसे लड़ रही हैं इस बीमारी से।
अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरे अंदर एक पेरिटोनियल खतरनाक अग्रेसिव कैंसर है, क्योंकि आई डोंट फील मैं कि मैं बीमार हूँ, एक्सेप्ट कीमो के बाद थोड़ा डाउन हो जाता, फिर अगेन उठ के दौड़ने लगते हैं।
तुम बिल्कुल नहीं बदले,
तुम भी तो नहीं बदली, उतने ही खूबसूरत हो आज भी।
बहुत फिट हूँ, एथलीट भी हूँ, हर और कभी हार नहीं मानती अगेंस्ट एग्जॉशन, बहुत हिम्मत है मेरे अंदर। मगर दो माने लास्ट टू मंथ से जो मेरा अंदर जो डाउनवर्ड एनर्जी लेवल्स होते गए, ये मेरे को समझ में नहीं आया, और इसीलिए मैं बार बार डॉक्टर के पास गए कि कोई चीज़ है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न। परेशानी वॉज दर्द, हर टाइम दर्द 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 दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, गैस, एसिडिटी का जैसे बर्पिंग होता ना, लंबे लंबे बर्प्स। मैंने कहा कि अचानक क्या हो रहा है मेरे अंदर कि ऐसे बिना बिना कोई भी चीज़ खाए बर्पिंग। ये मेरे को मेरे अंदर आई थिंक शक पैदा किया कि कोई तो वजह होगा कि अचानक ऐसे कैसे हो सकता किसी के अंदर। अनफॉर्चुनेटली कैंसर, रेडिएशन हो, कीमोथेरेपी हो, सर्जरी हो, उसमें खर्चा बहुत आते हैं। तो मेरा विश यही है कि किसी की ज़िंदगी में कैंसर ना हो, और होने से बड़े हॉस्पिटल्स की जगह सरकारी हॉस्पिटल में ज़रूर जुड़ना, बिकॉज इलाज बहुत महंगा है, आम आदमी के लिए मुश्किल है। और इसलिए हर हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हो सरकारी हो, गरीब लोगों के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होना चाहिए सपोर्ट के लिए। मेरे अंदर जो लड़ाई है वो सेल्फ युद्ध है, वो अपने युद्ध लड़ती हूँ या लड़ना है। एंड डॉक्टर्स सही तरीका से, दे हैव टू आर्म मी टू अटैक द कैंसर एंड किल इट। विल पावर बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए, लड़ाई लास्ट तक लड़ना चाहिए। एंड टू ओवरकम कैंसर एक रियलिटी भी है, और उसके उस सोच के साथ जी जिंदगी जियो, जी भर के जियो।
ये थी अभिनेत्री नफीसा अली। आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों का।
आपकी राय, आज मैं आपके साथ हूँ पंकज प्रियदर्शी, और आज मेरा साथ दे रही हैं
मैं सरोज सिंह।
जी सरोज, बताइए, मैं देख रहा हूँ कि एक पोस्टकार्ड आपके पास है।
एक पोस्टकार्ड भी है और एक अंतर्देशीय लिफाफा भी है। दोनों ही जो चीजें हैं वो लिखी हैं अनिल डोबरियाल ने पौड़ी गढ़वाल से, और इनका कहना है कि आप शामिल नहीं करते, इसलिए इस बार शामिल करने के लिए इन्होंने दो दो चिट्ठियों से दबाव डाला है हम पर। और इनका कहना है कि संदीप सोनी जी से उनकी प्रार्थना है कि उत्तराखंड के पलायन पर वो एक विवेचना या कोई कार्यक्रम जरूर प्रस्तुत करें। और साथ ही साथ उन्होंने बीबीसी की तारीफ तो की है, वो बहुत ही लंबा पत्र है, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन जो काम की बात है वो मैं आप तक पहुँचा दे।
देखिए सरोज, जहाँ तक मुझे याद है मैंने इनकी चिट्ठी पहले भी अपने कार्यक्रम में ली थी, और मैं ही उस समय आपकी राय पेश कर रहा था। तो अनिल, आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि आपका पत्र शामिल नहीं होता। और जहां तक बात है, आपने उत्तराखंड के पलायन को लेकर एक कार्यक्रम करने की बात की है, तो मुझे याद है उस दौरान भी मैंने आपके इस सवाल का जवाब दिया था। कई बार विषय ऐसे होते हैं, और हमारा कार्यक्रम सिर्फ आधे घंटे का है, और इंडिया बोल प्रोग्राम साप्ताहिक है, आपको पता है, तो कई बार हम लोग को सरोज प्राथमिकताएं तय करनी होती है, और उसमें बहुत, जैसे चुनाव का समय आजकल चल रहा है, तो कई विषय, कई मुद्दे ऐसे होते हैं कि हम लोग को तय करना होता है, और उस आधार पर कई बार ये चीज़ें छूट जाती है। लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा, वो समय लंबा हो सकता है, शायद आपको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपका सुझाव हम लोगों ने नोट कर लिया और दिमाग में भी है, और जैसे ही इसका मौका मिलेगा हम इस पर जरूर कार्यक्रम करेंगे।
अगला ईमेल ले रही हूँ, गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से, उन्होंने लिखा है, शनिवार इंडिया बोल में संदीप सोनी और विशेषज्ञ शेखर अय्यर की युगलबंदी उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उनकी एक शिकायत भी है, कल वेस्ट बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, दो परंतु बीबीसी में एक घटना का जिक्र हुआ। उन्हें इस बात का खेद है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर से उतरने नहीं दिया गया, इसके बारे में उन्हें कार्यक्रम में शायद नहीं बताया गया, इस पर उन्हें चिंता भी है, और इसी की शिकायत उन्होंने।
गौतम दत्ता जी, जो पहले अनिल भाई के पत्र के जवाब में मैं बोल रहा था, कई बार आधे घंटे का कार्यक्रम है, और जहां तक बात है योगी जी के दौरे की बात है, जो पश्चिम बंगाल में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया था, तो हाँ आपकी बात सही है, हमें इसको कवर करना चाहिए था, लेकिन हमसे भी कई बार खबरों की आपाधापी में कुछ चीज़ें छूट जाती है, हम इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे आगे से। और आपसे वादा भी है कि इस तरह की खबरें आगे से न छूटे, आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और चिट्ठियां भी लिखते रहिए।
अगला भी मैं ईमेल ले रही हूँ। इस ईमेल में हमारी बुराई भी की गई है। अक्सर ये हम पे आरोप लगते रहते हैं कि हम सिर्फ अपनी अच्छी चीज़ों को ही पेश करते हैं। तो नितेश कुमार जी हैं, कहना है कि आप लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो गए हैं। जितने हथकंडे बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चला रही है उससे कहीं ज़्यादा आप लोग उसे हराने में लगे हो। उन्होंने कुछ टीवी चैनलों का नाम भी लिया है और कहा है कि कुछ लोग सत्ता के करीब हो गए हैं और कुछ लोग सत्ता के विपक्ष में हो गए हैं, लेकिन कोई भी तटस्थ नहीं है, ऐसा इनका दावा है।
नितेश कुमार जी, आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किया बहुत भारी भरकम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कम से कम बीबीसी से तो आप ये बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और बीबीसी, जैसा कि आपको पता है, वो इसलिए भी जानी जाती है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है और इस आधार पर ही हम पूरी बीबीसी की परंपरा को अब भी निभा रहे हैं। जहां तक बात है कि हम पे ये आरोप है कि हम मोदी विरोधी खबरों को लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब कोई सरकार सत्ता में है और उस पर सवाल उठते हैं, तो अगर आप सत्ता में हैं तो जाहिर है सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको इस तरह न देखा जाए कि हम मोदी विरोधी खबरें या सत्ता विरोधी खबरें करते हैं। कई बार जो मोदी सरकार ने योजनाएं की हैं उसके बारे में जो अच्छाइयां हैं वो भी बताई है, उसमें जो कमियाँ हैं उसका भी जिक्र किया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अपने परिप्रेक्ष्य को बदलने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पत्रकारिता सिर्फ ये अच्छी अच्छी खबरें बताने के लिए ही नहीं होती है। पत्रकारिता ये भी होती है कि हम लोगों को वो चीज़ें भी बताएं जो कहीं ना कहीं पीछे छिप जाती हैं। तो मुझे लगता है कि आपका ये आरोप निराधार है। और आगे जब भी दूसरी भी पार्टियों में कई बार ऐसा होता है कि उन पर सवाल उठते हैं, तो हम उन पर भी खबरें करते हैं।
अगला जो ईमेल है वो गुड्डू गौतम मोतिहारी बिहार से लिखते हैं। उनका कहना है कि दिन भर प्रोग्राम में बजट पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन बिहार को क्या क्या मिला इस पर चर्चा नहीं हुई, बहुत दुखी हैं।
देखिए, पहले तो ये अंतरिम बजट है और बिहार को क्या मिला, आपने अगर बजट के बारे में सुना होगा तो बहुत कुछ ऐसा था भी नहीं, क्योंकि ये अंतरिम बजट है और बहुत बड़ी बड़ी जो चीज़ें थी, उसके मुद्दे थे, उसके पॉइंट्स थे, वो सब हमने चर्चा की। और अभी ये सारी चीज़ें प्रस्ताव है, आपको पता होगा कि चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद जो नई सरकार आएगी, जिसकी भी सरकार बनेगी, वो पूर्ण बजट पेश करेगी, तो वो प्रस्ताव है। तो इस बार हमारा मकसद ये था कि जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, उनकी जो मुख्य मुद्दे हैं, उनको हम लोगों के सामने रखें।
एक लास्ट ईमेल लेकर खत्म करती हूँ। जंग बहादुर सिंह है, इनका भी कहना है कि दिन भर का अंतरिम बजट पर जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा लगा, लेकिन विवेचना उस दिन नहीं प्रसारित हो पाई, इसका इन्हें बहुत दुख है। वो विवेचना नहीं हो पाई, लेकिन राधिका रामाशीषन से जो बातचीत हुई वो उन्हें बेहद पसंद आई।
बजट को लेकर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और उस दिन बजट आया था तो हमने सोचा कि उस दिन कार्यक्रम विवेचना को थोड़ा सा टाल दिया जाए, और अगली बार जरूर विवेचना आएगी, आप इंतजार कीजिए और रेहान फजल एक अच्छी विवेचना लेकर आपके पास आएंगे। तो सरोज, मुझे लगता है अब समय खत्म हो गया है, चलते चलते पता बताते, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003। और अगर ईमेल करना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब नजर दौड़ाते हैं आज की खेल गतिविधियों पर।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं ज्योतिका सिंह। शुरुआत करना चाहूंगी फुटबॉल से। स्टार फुटबॉलर मेसी ने स्पेनिश लीग के 22वें दौरे में AFC बार्सिलोना की तय नजर आ रही हार टाल दी है। और अब बात टेनिस की। भारतीय टेनिस टीम डेविस कप की मेजबानी का फायदा नहीं उठा सकी और इटली से हारकर फाइनल्स की रेस से बाहर हो गई। और अगर अब जाने से पहले क्रिकेट की बात की जाए, भारत के खिलाफ वनडे सीरीज को 4-1 से गंवाने के बाद न्यूजीलैंड टीम को T20 सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के सीनियर सलामी बल्लेबाज मार्टिन पीठ की चोट से उभरने में नाकाम रहने के कारण भारत के खिलाफ 3 मैचों की आगामी T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। मार्टिन की जगह ऑलराउंडर जिमी निशाम लेंगे, जो भारत के खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के अंतिम 2 मैचों में खेले थे। खेल समाचारों में आज इतना ही।
सभा के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई के खिलाफ अपना धरना 8 फरवरी तक जारी रखने की घोषणा की है। यूरोप के अग्रणी देशों ने वेनेजुएला में विपक्षी नेता खुआन ग्वाइडो को देश के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी है। जर्मन चांसलर एंगला मर्केल ने कहा है कि यूरोपीय संघ के साथ ब्रिटेन के भावी संबंधों पर बातचीत में उत्तरी आयरलैंड के लिए विकल्पों को सामने रखना ब्रिटेन पर ही निर्भर करता है। सूडान के राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने देश के सभी बैंकों को कम राशि के लोन पर ब्याज देने की बात कही है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।